कुमार ने शेखर का परिचय सबसे करा दिया। उसे साथ ले जाकर भोजन भी कराया और फिर कमरे में लाकर जाते हुए यह वादा ले गया कि जब भी किसी बात में शेखर को कुछ पूछने जानने की जरूरत होगी वह उसे बुलाएगा। शेखर ने वादा करते हुए पूछा, आप जान पड़ता है यहाँ पहले भी रहते हैं? हाँ, मैं पिछले साल भी यहीं था। फिर कुछ झेप सा कर, मेरी यह फर्स्ट ईयर में दूसरा साल है। अच्छा, आपकी आयु तो बहुत थोड़ी लगती है। मैं 16 वर्ष का हूँ, मैं 15 का, लेकिन मैं आपसे बड़ा लगता हूँ। और कुछ हंस कर, और मन में भी नहीं मानता कि छोटा हूँ। अच्छी बात है, आज से मेरे आप बड़े भाई रहे। क्यों मंजूर? कृतज्ञ शेखर कुछ बोल नहीं सका। उसने कुमार का हाथ पकड़कर धीरे से दबा दिया। कुमार चला गया। शेखर किवाड़ बंद करके अपने चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा, इस अकारण वरदान के लिए वह किसके प्रति कृतज्ञ हो कि इतने बड़े मद्रास में पहले ही दिन बिना खोजे ही उसने अपना सखा पा लिया है। किसी अज्ञात शक्ति के प्रति। शेखर, सिनेमा चलोगे? शेखर ने कुछ विरक्त स्वर में कहा, क्या रोज रोज सिनेमा देखा करे? कभी परसों तो गए थे। कुमार ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है और मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि बहुत बार बाहर जा सकूं, पर आज का फिल्म बहुत अच्छा था इसलिए मैंने सोचा कि शेखर को साथ लेकर। कहकर उसने एक लंबी सांस ली। उस सांस के पीछे जो निराशा का भाव था वह शेखर के दिल में चुभ गया। उसे याद आया, कुमार ने एक दिन बताया था कि उसके माता पिता निर्धन हैं और वह मुश्किल से पढ़ाई का खर्च भर उनसे पाता है। पिछले वर्ष उसने तनिक भी मनोरंजन नहीं किया, यहाँ तक कि चिंताओं के कारण ही उसकी पढ़ाई नहीं हुई और वह फेल हो गया। उसी दिन से शेखर ने मन ही मन संकल्प कर लिया था कि जहाँ तक हो सकेगा वह कुमार को प्रश्न रखेगा और उसे कम से कम आर्थिक कष्ट कोई नहीं होने देगा। आज एकाएक उस बात का ध्यान आ जाने से उसका हृदय पिघल गया। उसे लगा कि अपने सुख के लिए किसी पर निर्भर करना ही इतनी दंडनीय अवस्था है कि बाहरी चोट के द्वारा उसकी याद दिलाना एक बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। उसने जल्दी से कहा, तब अवश्य चलो कुमार, और यह बात मेरे आगे मत कहा करो कि कुछ रुक कर मुझे बहुत दुख होता है। कुमार ने कहा, जो सच्ची बात है उसे कहने में क्या हर्ज, लेकिन तुम मना करते हो तो नहीं कहता। दोनों बाहर चल दिए। महीना भर हो चला। एक दिन शेखर ने कुमार के कमरे में जाकर कहा, कुमार आज समुद्र पर चले। सिनेमा थिएटर रोज देख देख कर मैं तो उकता गया। कुमार ने कहा, अच्छा चलो। ट्राम में बैठकर दोनों चल पड़े। पहुंचकर वह पैदल चलने लगे। बस्ती से निकलकर वे एक निर्जन सी सड़क पर आ गए थे। संध्या होने लगी थी। पथ पर दोनों ओर लगे हुए वृक्षों की लंबी लंबी छाएं पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि धूल के कारण असमतल उस पृथ्वी की कंचन मेखला पर चित्रकारी की गई होगी। भूमि की ओर देखता हुआ एक हाथ में कुमार का हाथ थामे हुए जाने क्या कुछ सोचता हुआ शेखर चुपचाप चला जा रहा था। कुमार बोलने की इच्छा से बार बार उसकी ओर देखता था, लेकिन उसकी मुद्रा देखकर चुप हो जाता था। जब समुद्र का गंभीर नाद उन्हें सुन पड़ने लगा तब संध्या हो चुकी थी और आकाश में लालिमा अधिक घनी होकर ज्योतिहीन होने लगी थी। वे कुछ जल्दी चलने लगे और थोड़ी देर में तट पर पहुंचकर एक चट्टान की आड़ में समतल तल पर बैठकर लहरों की ओर देखने लगे। देखते देखते आकाश में संध्या का अंतिम प्रकाश भी बुझ गया। शांति थी, हवा नहीं चल रही थी, लोग भी धीरे धीरे चल गए थे। तट का वह अंश बस्ती से काफी दूर था। अंधकार में समुद्र की ओर देखता हुआ शेखर सोच रहा था कि वहाँ पर कुमार के साथ बिल्कुल अकेला है और जैसे समुद्र का गंभीर चितरंजन अर्थात चिरंतन गर्जन उन्हें घेरे हुए है। क्योंकि पवन के निश्चल होने पर भी समुद्र में एक गहरा असंतोष सा था। फेनिल लहरें दूर से भागी हुई नहीं आ रही थी, लेकिन दूर फेनहीन हलचल थी और तट के पास पास निरंतर फेन का जैसे कहाड़ उबल रहा था, फुपका फुपकार रहा था, बढ़ रहा था, और जाने कहाँ से वह विशाल गंभीर घोष सा हो रहा था, लहरों के स्वर से अधिक भारी धीर। उस दिन पूर्णिमा थी और समुद्र के पार पूर्व में चंद्रोदय होने वाला था। उसकी अगवानी करने को एक अकेला बादल, चारों ओर एक चांदी की झालर में विभूषित क्षितिज पर खड़ा था और उसके पीछे शीघ्र प्रकट होने वाली किसी अभूतपूर्व सौंदर्य राशि की आभा आगे फूटी पड़ी थी। शेखर स्वयं चुप था, कुमार उसके कारण चुप था। शेखर धीरे धीरे कुमार के लंबे बालों में उंगलियां फेर कर उन्हें उलझा रहा था और उसे लग रहा था कि कुमार के बाल एक सिहरन सी द्वारा उसके स्पर्श का प्रतिदान दे रहे हैं, वैसे ही जैसे कुत्ते कभी कभी अपने स्वामी के स्नेहपूर्ण स्पर्श की कृतज्ञता बताया करते हैं। शेखर बोला तो कुमार जैसे चौंक उठा, देखो कुमार, ऐसे लगता है जैसे इस दुनिया में तीसरा कोई नहीं है। कुमार ने उत्तर नहीं दिया। शेखर ने मुट्ठी में उसके बाल धरते हुए एक हल्का सा झटका देकर कहा, क्यों बोलते क्यों नहीं? यद्यपि उसे यह नहीं लगा कि कुमार के कुछ कहने की जरूरत है। शेखर ने फिर कहा, या है या भी ठीक है, हर एक की दुनिया उतनी ही होती है जितनी कि वह जानता है, क्योंकि अपनी अनुभूति के बाहर से जो है उसे हम कैसे जाने कि वह है भी। मुझे पता है कि मैं पीछे बहुत सी दुनियाएं छोड़ आया हूँ और यह भी है कि आगे भी बहुत सी दुनियाएं होगी, लेकिन एक को मैं अभी जानता नहीं, दूसरी इस क्षण में मुझे मिथ्या लगती है, मेरे अनुभव में नहीं आती। इस समय मेरी दुनिया की सीमाएं हैं, पीछे या चट्टान, सामने वह बादल और उसके पीछे उदय होने वाला चांद, इधर मैं और उधर तुम। वह चुप हो गया। कुमार अब भी कुछ नहीं बोला। शेखर ने अपने हाथ उसके बालों में से निकालकर भूमि पर टेक दिया और ध्यानस्थ सा हो गया। थोड़ी देर बाद वह फिर बोला, कुमार, आज कुछ भी सच्चा नहीं लगता, सभी स्वप्न है, लेकिन जिस स्वप्न का मैं इस समय का अंग हूँ वह कितना मधुर लग रहा है। बताओ, तुम मुझे अपने से बड़े क्यों नहीं लगते? मुझे क्यों लगता है कि तुम छोटे हो और मैं जैसे तुम्हारा संरक्षक, तुम्हारा गार्डियन एंजल अर्थात देवी रक्षक हूँ और तुम मुझ पर निर्भर करते हो। कुमार ने जल्दी से कहा, ठीक तो है, मैं तुम ही पर तो निर्भर करता हूँ। शेखर की विचार तरंग के अनुकूल ही था या उत्तर, लेकिन यह उसे बुरा सा लगा, जैसे उसमें कुछ जल्दी थी, कुछ अकुलाहट, कुछ बनियापन, जैसे वह उसे विराट स्वप्न के संसार में से क्षुद्र यथार्थता में घींचे ला रहा था। वह बोला, कुमार, तुमने मालूम होता है मेरी कोई बात सुनी नहीं। कुमार ने चौंक कर कहा, सो तुमने कैसे जाना? नहीं सुनी होती, जवाब ऐसे ही दे देता। शेखर ने और गंभीर होकर कहा, सच सच बताओ, तुम अभी क्या सोच रहे थे? बताऊं, नाराज तो नहीं होगे? मैं तुमसे नाराज? कुमार ने कुछ हिचकते हुए कहा, बात यह है कि मेरी माँ थी बहुत बीमार और उनके इलाज में पिता ने अपनी सारी तनख्वाह खर्च कर डाली, शायद कर्ज भी लिया। इस महीने में कुछ भी नहीं भेजा, उन्होंने शायद अगले महीने में भी नहीं भेजेंगे। मैं फीस भी नहीं दे पाया, इसलिए शायद कॉलेज से मुझे अब तक क्यों नहीं बताया। कुछ और हिचक से, मैं हर एक बात में तुम्हारी ही तो सहायता मांगता हूँ और मेरा है कौन यहाँ? लेकिन मुझे यह भी विचार रहता है कि कहाँ तक। शेखर ने कुछ रुष्ट होकर कहा, मुझे तुमने कोई और समझा? फिर कितना रुपया चाहिए तुम्हें? कुमार ने कुछ अटकते हुए कहा, ठीक पता नहीं, शायद 50 या शायद कुछ यही 50-60 तक। 100 रुपये काफी होंगे? कुछ संकोच से, 100 का मैं क्या? अच्छा बस अब छोड़ो इस बात को, कल सब ठीक हो जाएगा, खबरदार अब ऐसी बात सोची तो। शेखर, मैं तुम्हारा। इस वाक्य के अगले शब्द जानकर शेखर ने उसे रोकते हुए कहा, बस चुप, अब जो कह दिया है कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी अब। दोनों फिर चुप हो गए। धीरे धीरे चांद निकल आया। शेखर ने देखा, चांद के बाहर आते ही वह बादल का टुकड़ा, जो अभी तक एक चांदी की झालर से सजा हुआ था, काला पड़ गया और चांद के प्रकाश में आसपास तट की रेत की बिचड़न में काले धब्बों से पत्थर बिखरे हुए दिखने लगे थे। उसने कुमार की ओर देखा, वह चांद की ओर देख रहा था। शेखर ने एकाएक कहा, कहकर वह स्वयं विस्मित सा हो गया कि उसने क्या कहा है। इतना कम समय लगा था विचार के शब्दबद्ध और प्रकट होने में। कुमार, यदि मेरे अतिरिक्त तुम और किसी के हुए तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। कुमार ने कुछ भीतर से स्वर में कहा, तुम क्या कह रहे हो शेखर? शेखर ने कुमार को अपनी ओर खींचकर उसका मुंह चूम लिया, लेकिन साथ ही उसके मन में एक शंका हुई, स्वर में या भय क्यों? और उसे यह भी लगा कि जो कुछ उसकी ओर से है, दूसरी ओर से वह नहीं है। जैसे झील में उसका प्रतिबिंब मात्र, जिसमें कंपन है, लेकिन कंपन जीवन का नहीं, माया का। पर उसने इन दोनों संदेह को तत्काल दबा दिया। कुमार ने कहा, चलो अब चले, देर बहुत हो गई। शेखर ने यत्न से समुद्र की ओर से आंख हटाते हुए कहा, चलो। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन अभी जो उसने कहा था, जिस दबाव के कारण कहा था, उसका ध्यान करके उसे लगा कि वह कुमार की बात का खंडन नहीं कर सकता। वह दोनों हॉस्टल लौट आए, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। शेखर ने 100 रुपये कुमार को दिए, कुछ दिन बाद 20 रुपये और दिए। इनमें 50 रुपये उसे जमा रखने के लिए दिए गए थे, कभी जरूरत पड़ जाने पर उपयोग के लिए, बाकी उसका अपना महीने का खर्च था। रुपया इस प्रकार देकर उसने घर से और रुपये मांगने के लिए पत्र लिख दिया। 2 दिन में पत्र का उत्तर आ गया, रुपये नहीं आए। पिता ने लिखा था कि शेखर रुपया बर्बाद कर रहा है, रुपया जरूरी खर्च के लिए है, मित्रों को लुटाने के लिए नहीं, और ऐसी ही कई बात। और यह भी कि वह दोबारा सोच कर लिखे कि कितना रुपया उसे चाहिए, वह भेज देंगे। शेखर ने आहत अभिमान से भर कर लिख दिया कि वह जो कुछ लिखता है सोच कर लिखता है, उसे उतने रुपये चाहिए, दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। यदि भेजने हो तो भेज दे, नहीं तो ना भेजे। इस पत्र का कोई उत्तर नहीं आया था और पैसे भी नहीं आए थे। शेखर ने कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया था। कुमार ने आकर कहा, चलो आज सर्कस चले। शेखर ने कहा, आज तो जाने की बिल्कुल तबीयत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आजकल तुम बाहर ही नहीं निकलते, बात क्या है? कुछ नहीं, यूं ही तबीयत नहीं ठीक है। आज तो चलो, तबीयत तो वहीं बैठे बैठे खराब होती है। अब तो सिनेमा गए भी 10-15 दिन हो गए हैं। शेखर ने मुंह फेर कर कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और शीघ्र आ जाएंगे, इसकी कोई संभावना भी नहीं दिखती। कुमार ने थोड़ी देर रुक कर पूछा, क्या बात हुई? पिता ने लिखा था मैं बहुत फिजूल खर्च कर रहा हूँ, वे उतने रुपये नहीं भेज सकते। मैंने लिख दिया कि अगर आप उतने नहीं भेज सकते तो बिल्कुल मत भेजिए। बस थोड़ी देर फिर दोनों चुपचाप रहे। फिर कुमार ने उठकर कहा, मैं जाता हूँ, मुझे जरा बैठो ना, मेरा जी नहीं लगता, आज शाम यहीं बैठकर बात करेंगे, या चलो समुद्र पर। नहीं, मुझे याद आ गया, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अच्छा ही हुआ सर्कस नहीं गए, नहीं तो। कहकर जल्दी से वह बाहर चला गया। शेखर कमरे में लेटा हुआ छत की ओर देखने लगा। क्यों है गरीबी, क्यों है धन, क्यों ऐसा है कि आदमी मनोरंजन की इच्छा रहने पर सिनेमा सर्कस नहीं जा सकता, और क्यों एक दूसरा आदमी उसका जाना संभव बनाने की सामर्थ्य रखते हुए उसे जाने से रोक देता है। लेकिन मनोरंजन और क्या सिनेमा थिएटर में ही है? बिना वहां जाए क्या व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता? पहले भी तो ऐसे दिन थे जब वह सिनेमा नहीं जाता था, तब क्या उसका मनोरंजन नहीं हुआ? जब वह परीक्षा देने लाहौर गया था, तब भी पढ़ते पढ़ते उकता कर वह मनोरंजन चाहता था। तब तो उसके लिए इतना ही पर्याप्त होता था कि शशि बिना कुछ बोले ही उसके पास से हो जाया करे और वह उसे बहन जी कहकर चिढ़ा लिया करे, या इतना भी नहीं, वह दूर से ही उसकी हंसी सुन लिया करे। अब क्यों नहीं वह ऐसा कर सकता? कुमार वहाँ होता तब शायद वह ये सब बातें नहीं सोचता। कुमार की निकटता, कुमार की बातचीत, कुमार की हंसी उसके लिए पर्याप्त होती। पर कुमार के लिए, पर शशि के लिए क्या है वह प्यार की आकस्मिक घटना जो आदमी को इस प्रकार दूसरे का आश्रित बना देती है, पर साथ ही शक्ति भी देती है, आश्रयदाता भी बनती है? और क्या है वह प्यार से भी बढ़कर आकस्मिक घटना, प्यार से भी बढ़कर शक्ति जो प्यार को संभव बनाती है, जो परिस्थिति उत्पन्न करती है जिसमें प्यार हो सके, जिसमें दो आत्माएं मिल सके। लेकिन क्या वह और कुमार एक है? क्या उस एकत्व में बहुत नीचे कहीं एक खोखलापन नहीं है? क्या वे एक ही वस्तु चाहते हैं, एक ही तरह चाहते हैं क्या? लेकिन क्या जरूरी है कि प्यार के लिए कोई दो परस्पर एक दूसरे के हाथ बिके, एक दूसरे के गुलाम बने? क्या दास्ता के बिना प्यार नहीं है? यदि है, तब फिर वह सीमा भी क्यों हो कि प्यार दो इकाइयों के बीच हो? क्यों यह जरूरी है कि किसी को ही प्यार किया जाए? क्या प्यार की भावना किसी स्थूल एकाकी विषय से अलग नहीं की जा सकती? क्या जरूरी है कि मैं प्यार करता हूँ इस वाक्य अनिवार्य अनुवर्ती हो, या प्रश्न कि किसे प्यार और वह कौन भी एक ही हो? क्या सारी मानवता को ही प्यार नहीं किया जा सकता? क्या प्यार को ही प्यार नहीं किया जा सकता?